नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से एक महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमरीकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत जापान साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों से भारत में निवेश और कारोबारी साझेदारी बढ़ाने का आह्वान किया। नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के संबंध शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा सोच पर आधारित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल ही में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। एजेंसी ने करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल करने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार प्रश्न पत्रों की जांच के लिए 4 स्तर की व्यवस्था लागू की जाएगी। हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम की फॉरवर्ड लाल रेमसियामी और पुरुष टीम के मिडफील्डर राजकुमार पॉल को अर्जुन पुरस्कार 2025 के लिए चुने जाने पर बधाई दी है। खेल मंत्रालय ने कुल 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति इन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगी। मिजोरम की लाल रेमसियामी 2017 से भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत के ऐतिहासिक चौथे स्थान हासिल करने में अहम भूमिका निभाई थी। उत्तर प्रदेश के राजकुमार पॉल ने 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया। वह पेरिस 2024 ओलंपिक में लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।